आप हैं SBS हिंदी के साथ।
ऑस्ट्रेलिया में हालात बेहतर, कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हुए। चीन की धमकी पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा, हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। और भारत में एक दिन में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें। नमस्कार, मैं हूं विवेक आसरी। सुनिए 28 अप्रैल शाम 5 बजे तक के समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए संक्रमणों में आ रही कमी उत्साहजनक है। मंगलवार सुबह तक देश में कोविड 19 के सिर्फ 12 नए केस दर्ज हुए हैं। श्री हंट ने कहा,
That is perhaps the most important figure I've had the privilege of raising since coming into this role and dealing with the coronavirus issue. It means that as a country, we are not just flattening the curve, but we are consolidating it, extending it and securing it.
ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोविड 19 के 6,700 से ज्यादा मामले आए हैं, जबकि 84 लोगों की जान गई है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन, कृषि और शिक्षा क्षेत्र का बहिष्कार करने की धमकी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड 19 के फैलने में चीन की भूमिका की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग का समर्थन किया है, जिसके बाद चीन की ये प्रतिक्रिया आई है। लेकिन व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंगम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया धमकियों के आगे नहीं झुकेगा।
Let's be honest here. COVID-19 has seen hundreds of thousands of people die around the world, millions of people lose their jobs, billions of people face massive disruption to their lives. The least the world can expect is a transparent inquiry into the causes of COVID-19 so that we can understand how best to prevent a repeat episode anytime in the future.
33 लाख लोगों को रोजगार देने वाले देश भर के 5 लाख से ज्यादा उद्योगों ने वेज सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है। 130 अरब डॉलर के जॉब कीपर्स पैकेज के तहत लॉकडाउन की मार झेल रहे सभी उद्योगों के कर्मचारियों के लिए $1,500 प्रति पखवाड़े का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 4.5 अरब डॉलर का भुगतान किया जा चुका है। डेप्यूटी ट्रेजरी सचिव जेनी विल्किंसन ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने वाले उद्योगों की संख्या बढ़ रही है।
As of 2 p.m. yesterday, 540,000 businesses have enrolled, and our early estimates, and these are just indicative estimates, but our estimates are that those enrolments would cover around 3.3 million employees.
न्यू साउथ वेल सरकार ने कहा है कि इस हफ्ते के आखिर में लोगों के एक दूसरे के घर जाने की पाबंदी हटा ली जाएगी। शुक्रवार 1 मई से 2 वयस्क और बच्चे एक दूसरे के घर आ जा सकेंगे। प्रीमियर बेरेजिक्लियान ने बताया,
We trust everybody to do it responsibly. Don't take risks. We don't want to see the numbers suddenly spike up because people are being irresponsible. And I'm absolutely confident that people will be responsible because there's too much at stake.
ACT की सरकार ने अस्थाई वीजा धारकों और विद्यार्थियों की मदद के लिए 4.5 लाख डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया है। रिफ्यूजी असाइलम सीकर एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन कमेटी को कैनबरा में रहने वाले शरणार्थियों की मदद के लिए $1,40,000 दिए जाएंगे, जबकि रेड क्रॉस को $1,60,000 मिलेंगे, जिनसे वो अस्थायी वीजा धारकों की मदद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की मदद के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में, न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन की सख्ती में थोड़ी छूट दी है और हाई अलर्ट के अपने उच्चतम स्तर से एक चरण नीचे आ गया है। इस कारण न्यूजीलैंड में हजारों लोग काम पर लौट रहे हैं। हालांकि सरकार अभी भी कोरोना वायरस के कारण नौकरियां खोने वाले लोगों को लेकर चिंतित हैं। लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी के खतरे को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। वहां की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने बताया,
At level 3, around 75% of the economy is operating, with key sectors like building and construction, forestry, manufacturing and contactless retail starting back up. Importantly, major infrastructure projects start up again today.
और चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में भी बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। शंघाई में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के फाइनल ईयर के बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है, जबकि बीजिंग में बच्चों को यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल आने की इजाज़त दी गई है। ये प्रवेश परीक्षा जुलाई में होनी है। कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया भर में अब तक 2,10,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमितों की कुल संख्या 30,00,000 से अधिक हो गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा जाने गई हैं और वहां मरने वालों की संख्या 56,000 को पार कर गई है। हालांकि कोलोराडो, मिसिसिपी, मिनेसोटा, मोंटाना और टेनेसी राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदियां अब खत्म की जा रही हैं। और अब चलते हैं भारत के समाचारों की ओर। भारत में कोविड 19 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 29,435 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 934 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1543 नए मामले सामने आए हैं और 62 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में वहां 190 नए मामले सामने आए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की आलोचना की और कहा कि भाषण से नहीं बल्कि राशन से पेट भरता है। भारत के समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पालघर मॉब लिंचिंग मामले पर अर्णब गोस्वामी की टिप्पणी के बाद दर्ज एफआईआर के मामले में उनसे ये पूछताछ हुई है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की शिकायत पर नागपुर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी। पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में श्री गोस्वामी ने कहा,
The interrogation that was done today was about my comments on Sonia Gandhi. I have made it very clear that I stand by my comments. I have made it absolutely clear that everything that I have said is correct. I have said to the police my side of the story. They are completely satisfied.
अर्णब गोस्वामी पर आईपीसी की दंगा भड़काने, धर्म और नस्ल के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाओं को उकसाने आदि से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। और अब जानिए एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का हाल। ये समाचार लिखे जाने के वक्त एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत थी 65 अमेरिकी सेंट्स और भारतीय मुद्रा में 49.34 रुपये। और अब खबरें खेल जगत से। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट के कारण वर्चुअल टेनिस मैच में हिस्सा नहीं लिया। उन्हें सोमवार को मैड्रिड ओपन के एक वर्चुअल टेनिस मैच में हिस्सा लेना था। कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी टेनिस प्रतियोगिताएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन मैड्रिड ओपन में ये वर्चुअल मैच चल रहे हैं। नडाल इसके ग्रुप मैच में कनाडा के डेनिस शापावालोव को हरा चुके हैं। शापावालोव ने वर्चुअल मैच के अनुभव पर बताया,
I don't think in my life growing up I ever thought I'd be playing against Rafa on PlayStation, you know, so it's pretty awesome.
ये थे खेल समाचार। अब सुनिए कल कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। पर्थ में धूप रहेगी, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। एडिलेड में भारी बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अधिकतम 16 डिग्री। मेलबर्न में भी बारिश का अनुमान है, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री। होबार्ट में बारिश, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अधिकतम 20 डिग्री। कैनबरा में भी बारिश, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अधिकतम 17 डिग्री। सिडनी में बादल बरसने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री। ब्रिस्बेन में हल्के बादल रहेंगे, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, अधिकतम 28 डिग्री। डार्विन में ज़्यादातर धूप रहेगी, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, अधिकतम 34 डिग्री। और भारत की राजधानी दिल्ली में बुधवार को धूप रहेगी, तापमान 26 से 37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार समाप्त होते हैं। और खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, पता है www.sbs.com.au/hindi। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।